ओम शांति, ओम शांति। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे हैं, दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर सा अवसर है।
मम्मा के दिन प्यारे प्यारे, मम्मा से तपस्या करनी है। वो 14 वर्ष की भट्ठी 4 दिन में ही करनी है। मिला मधुबन में यह मौका, मिला मधुबन में यह मौका। सहज सब साज साज है, दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं।
बहुत सुंदर लिखा है भाई साहब ने, भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं।
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
आप ताली बजा सकते हैं खुशी में अपनी।
होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है।
होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है।
बाबा मम्मा दादियों ने लिखी दिल्ली की कहानी है।
होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है। बाबा मम्मा दादियों ने लिखी दिल्ली की कहानी है।
बनाने परिस्थान फिर से
उमंगों में सब नाचे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में
ईस्ट पटेल नगर डिफेंस कॉलोनी भी संग में
है। आया ईस्ट पटेल नगर डिफेंस कॉलोनी भी संग में।
राजश्री दीदी प्रभा दीदी निरंगा रूहा निरंग में
है। आया ईस्ट पटेल नगर डिफेंस कॉलोनी भी संग में। राजश्री दीदी प्रभा दीदी रंगा रूहा निरंग में।
बना मौसम भी मस्ताना,
बना मौसम भी मस्ताना, मयूरा मन के नाचे हैं आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं आज तो आपके स्वागत में।
बहुत प्यारी से दिन है, योग दिवस भी है, मम्मा के दिन भी है।
ममा के दिन प्यारे प्यारे, ममा से तपस्या करनी है,
ममा के दिन प्यारे प्यारे, ममा से तपस्या करनी है।
वो 14 वर्ष की छठी 4 दिन में ही करनी है।
ममा के दिन प्यारे प्यारे, ममा की तपस्या करनी है, वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है।
मिला मधुबन में ये मौका,
मिला मधुबन में ये मौका, सहज सब साथ साजे हैं आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
हम सब का भव्य स्वागत करने वाले इन तीनों भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चंद पलों के अंदर हमारे बीच में शशि बहन जी पहुंचेंगे, पहुंच गए हैं। तो आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। हम पुनः पुनः एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, बहुत ही कंधों पर जिम्मेवारियां हैं, लेकिन फिर उतने ही ईजी और लाइट भी रहते हैं। आज हम सब के बीच में आए हैं, जो पालना जो भासना दादियों से ली है वो आपको भी कराएंगे और स्वागत टोली देकर मुख भी मीठा कराएंगे। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, हमारी दादियों की विशेष कर्म भूमि और आप सभी का अपने ही घर में अपने ही प्यारे बाबा अपनी ही दादियों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। और कितना सुंदर भाग्य है कि जून का महीना, प्यारी माँ का महीना, प्यारी माँ के द्वारा इतनी पालना और वो भी आप सबको इतना सुंदर मौका मिल गया दिल्ली वालों को इस महीने में बट्टी करने का। तो साथ साथ मैं ये सोच रही थी दिल्ली वालों का कितना ना भाग्य है, सतयुग में दिल्ली हमारी राजधानी होगी, लेकिन दिल्ली नाम नहीं होगा, परिस्थान होगा, इंद्रप्रस्थ होगा। उस राजधानी में जाने वाले और साकार बाबा भी दिल्ली को बहुत याद करते और दिल्ली में ही सभी दादियाँ सब दादियाँ दीदी मनमोहिनी दादियाँ सब वहाँ रह करके ऐसे ऐसे सेवा के बीज डाले हैं। और तो और बाबा का रथ गुलजार दादी भी काफ़ी समय दिल्ली में रही और दिल्ली में रहते हुए आप सबको सभी महारथियों के द्वारा क्लासेस ज्ञान योग की पालना खास करके जगदीश भाई जी के द्वारा और आपके तो शुक्ला बहन सुंदरलाल भाई उनके द्वारा और गीता दीदी के द्वारा कितनी न पालना मिली है। इतना भरपूर है कि एक एक को देखो तो भरपूर है, लेकिन भरपूर होते हुए फिर आप मधुबन में क्यों आए? इतना मिलता है, इतना मिल रहा है, झोली भरी हुई है, फिर मधुबन में भट्टी करने क्यों आए? श्री फोर्ट है आपके पास ORC है, पांडव भवन है, हरिनगर सेंटर है, सब जगह भट्टियाँ होती हैं, पर यहाँ पर आप भट्टी करने क्यों आए बताओ? हैं? याद ही नहीं क्यों आए हैं? क्यों आए हो? याद आती है, लेकिन वो अनुभव करना भी बताओ है। मैं आपको बताऊं, वो है बाबा के घर में आना, बाबा के साथ का अनुभव करना। क्योंकि आप सभी जो दिल्ली वाले हैं, इनमें से कुछ एक टीचर बहनों को छोड़ करके बाकी किसी ने ना तो साकार बाबा को देखा है ना प्यारी मम्मा को देखा है। आप सबके लिए बाबा ने पहले से ही शुभ संकल्प कर दिया था कि शुभ संकल्प की आप पैदाश हैं, साकार बाबा मम्मा के श्रेष्ठ संकल्पों की आप पैदाश हैं और आप सबको पालने वाले हमारी सब दादियाँ और सब वरिष्ठ दादाओं ने ही आप सबकी पालना की है। तो मधुबन में आकर के भट्टी करना, ये जो बच्चे बार बार उलहना देते हैं, बाबा हम देरी से क्यों आए, हमने बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा, हमने किसी को इसको नहीं देखा उसको नहीं देखा, लेकिन बाबा कहते मैं तो रोज देखता हूँ आपको, आप नहीं देखते बाबा तो देखते हैं ना, बाबा सूक्ष्म वतन में बुला करके आप सबको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, वरदान देते हैं, झोली भरते हैं। और बाबा ने क्या कहा है कि जब तक सारे बच्चे तैयार नहीं होते तब तक बाप बच्चों की पालना में लगे हुए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते हैं जल्दी बताओ आपके बच्चे कब तैयार होंगे? ब्रह्मा बाबा आपको कितना प्यार करते हैं, कभी नहीं कहेंगे मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, मेरे बच्चे तो पुरुषार्थ करते ही नहीं हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मानता नहीं है, तो बाबा कभी नहीं कहते कि मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, ढीले हैं, इधर बुद्धि जाती है उधर बुद्धि जाती है। बाबा हमेशा आपकी फेवर लेते, बाबा कहते शिव बाबा को कि बस तैयार हो रहे हैं ना, चलेंगे हम साथ चलेंगे। फिर कभी कभी बच्चे बहुत शरारती हैं, बाबा को कहते बाबा अविनाश कब होगा? बाबा कहते क्या हो गया आपको, आप क्या चाहते मैं चला जाऊँ यहाँ से? विनाश होगा तो शिव बाबा भी जाएगा, ब्रह्मा बाबा भी चले जाएंगे और आप सभी भी सतयुग में जाएंगे। सतयुग में ये तो नहीं पहचानेंगे कि हम ईस्ट पटेल नगर से आए थे या डिफेंस कॉलोनी से आए थे या मधुबन में आए थे या हमारी ये टीचर बहने थे, चाहे वहाँ परिवार होगा ये थोड़ी जानेंगे। वहाँ पर वहाँ तो बस अपने ही परिवार में रहेंगे, ये तो नहीं जानेंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग में ब्राह्मण बनना, संगम युग में बाप का बच्चा बनना ये एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है और इस भाग्य को अनुभव करना, उस भाग्य के स्वरूप बनना और वो भाग्य को अपनी ही प्रॉपर्टी बना लेना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और आज भी बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि बाप चाहते हैं कि सतयुग में ऊंच पद की लॉटरी बच्चे लें। अब बाबा को क्या बताएं, सब लॉटरी लेंगे? दिल्ली वाले तो ले सकते हैं कि नहीं, क्या बताना है बाबा को, हैं? सब लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन लेने के लिए बाबा ने आज बहुत अच्छी युक्ति भी बताई, पुरुषार्थ भी बताया। बाबा ने कहा किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी भी बात के लिए शौक नहीं आना चाहिए। तो ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि अपनी अवस्था को ऐसा मजबूत बनाएं जो कि बाबा और मैं, जैसे बाबा कहते हैं ये मेरे लाडले बच्चे हैं, सिकी लदे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं। बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे सब साधारण हैं, दुनिया की भेंट में देखेंगे तो कहेंगे साधारण है, बैठे कहाँ हैं। और बाबा कहते हैं ये मेरे विश्व महाराजन हैं, विश्व तख्त नशीन बच्चे हैं, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, होमनहार राजाएं महाराजाएं हैं। बाबा उस नज़र से देखते हैं और दुनिया किस नज़र से देखती है, ये क्या है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। लेकिन बाबा की जो दृष्टि है बच्चों के प्रति, इतनी ऊंच और इतनी महान है। तो जबकि अभी मातेश्वर जी का महीना चल रहा है, तो मधुबन के अंदर हम जब आते हैं तो मातेश्वरी जी भी बाबा के पास जब आए, मातेश्वरी जी की तो कहानियां आपने बहुत सुनी है। तो जब बाबा के पास आए, आप सुनना चाहेंगे या कि नहीं? सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो फिर नहीं सुनाएंगे। बाबा का पता क्या होता था, जब बाबा की मुरली चल रही होती थी ना, कोई उबासी करता था ना, तो बाबा कहता था देखो माया आ गई है, इसको बहुत प्यार कर रही है और ये माया के पास चलेगी। और बाबा के पास जब आकर के एक बाबा की मुरली चल रही हो और आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे ना, तो बाबा कहते थे ये माया का आह्वान कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ आए हैं, सारा अपना कारोबार छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ कर के आए हैं, वहाँ पर तो कितनी कारोबार की बातें हैं, यहाँ पर तो केवल आपको क्लास सुनना है और ज्ञान सुनना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, बुद्धि को इधर उधर नहीं करना है। साकार में बाबा क्या करते थे, जब मुरली चलाते थे ना तो बाबा खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के पूरे हाल के अंदर चक्कर लगाते थे और एक एक को दृष्टि देते थे। जैसे बाबा दृष्टि देते थे ना, तो दृष्टि देते ही बाबा को सारे के सारे बच्चे ऐसे सूक्ष्म वतन की ओर पहुंच जाते थे। अब आपके पास बाबा आ जाए तो क्या करोगे, अब मुझे बताओ क्या करोगे? उधर देखोगे, पीछे देखोगे, साइड में देखोगे, बाबा को देखोगे या किसको देखोगे, वो बता दो। बाबा को देखोगे, पक्का है? बाबा आएंगे, आपसे मिलेंगे, आंख बंद किया तो बाबा आगे दूसरे को वरदान देंगे, अगर आंख खुली होगी तो उसको वरदान मिल जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है ना। तो बाबा आते हैं, अभी यहाँ जो भट्टी आपकी चलेगी वो है इस मेडिटेशन हॉल में, और आपके पास तो वहाँ देखो सेंटर पर इतने सुंदर सुंदर हॉल है, बैठने की सुविधा है, इतना कंफर्टेबल है, एसी लगा हुआ है, बड़े आराम से बैठते हैं। और ये बाबा का हाल तो बहुत साधारण है, अभी करके सोफे लगे, पीछे कुर्सियाँ हैं, तो बहुत साधारण हॉल है। तो यहाँ पर योग लगेगा कि नहीं लगेगा? कहेंगे हमारा तो हॉल बड़ा अच्छा है, वहाँ तो देखो कितने सुंदर है, लेकिन बाबा के घर में तो सब कुछ सिंपल है, रहना भी सिंपल और खाना बहुत अच्छा है, इवन रहना सिंपल, हॉल भी सिंपल और बहुत सिंपल है। लेकिन इस हॉल की विशेषता मैं बताऊं कि ये हॉल जो है ये हॉल नहीं है, ये साकार बाबा के टाइम पर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर बाबा ने ये जो पास में बगीचा है ना, बाबा ने अपने हाथ से बगीचा लगाया था और वहाँ पर एक अंगूर की बेल भी थी। वो अंगूर की बेल बहुत बड़ी जो पहाड़ी तक आती थी और 24 जून को जब प्यारी माँ अव्यक्त हुई तो उससे एक दिन पहले बाबा ने मम्मा के हाथ से सभी बच्चों को अंगूर दिलाए और वो अंगूर हैं जो इतना मोटा है और उसके अंदर दो छोटे छोटे बीज होते थे। तो वो अंगूर की बेल यहाँ पहाड़ी तक थी और इस पहाड़ी पर बाबा मम्मा और दादियाँ बैठ करके तपस्या करते थे और तपस्या करते बाबा कहते आओ बच्चे गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो फिर सब दौड़ करके आते थे, बाबा बैठते थे, बाबा उनको योग कराते थे, बाबा फिर कहते थे बच्चे अभी आप ज्ञान का मनन करो, योग का सेमिनार करो। और बाबा का आपने एक फोटो देखा होगा पहाड़ी पर ऐसे हाथ किए मोलाई मस्ती में है, वो भी इसी पहाड़ी का है। तो ये पहाड़ी है, ये बाबा की विशेष तपस्वी पहाड़ी है। दूसरी पहाड़ी पर तो बाबा घुमाने ले जाते थे, तपस्या भी कराते थे, लेकिन ये वो पहाड़ी है जहाँ रोज तपस्या होती थी, रोज बाबा बैठते थे और रोज यहाँ पर बच्चों से मिलते थे। फिर क्या हुआ, बाबा ने जैसे मुरली के अंदर कहा ना, आगे चल करके बच्चे बढ़ते जाएंगे, स्थान कम होता जाएगा, तो जब साकार बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार एक टर्न में इतनी ज्यादा संख्या आ गई, इतने सारे भाई बहने आ गए, कहाँ ठहराए, कहाँ बिठाए, कहाँ बाबा से मिलेंगे, किसी को कहाँ पर, किसको कहाँ पर ठहराया था। फिर आंगन में ही बाबा की स्टेज बनाई गई थी। उस समय दो बार भोजन मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना 10 से 11 और 12 के बीच में, शाम को 4 से 6 के बीच में रात का भोजन मिलता था और 6 बजे वहाँ पर स्टेज सज जाती थी, बाबा वहाँ पर आते थे और चारों तरफ आप जैसे सफ़ेद पोशधारी फरिश्ते वहाँ बैठे हैं तो ऐसा लगता था बहुत सुंदर सभा लगती थी। फिर मीटिंग किया गया कि अब कहाँ बाबा के पधरामणि के लिए स्थान बनाया जाए, तो फिर उसके बाद ये पहाड़ी को समतल करके ये हॉल बनाया गया है। 1975 में ये हॉल बनकर तैयार हुआ। 1975 में अव्यक्त बाप दादा यहाँ पर आना आते थे और अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे एकदम कॉर्नर में, हम बाबा की सिक्की लदे यहाँ बाबा के पास बैठते थे, आप थोड़ा दूर हम नजदीक है, ठीक है ना तो हम यहाँ बैठते थे और उस समय यहाँ पर कोई सोफा नहीं था और एक ही कुर्सी होती थी दीदी मनमोहिनी जी के लिए, वो कुर्सी पर चाहे दादियाँ हों चाहे वरिष्ठ दादाएँ हों, सब के सब यहाँ ही बैठे होते थे। मुझे तो वो सीन याद आ रहा है कैसे हम बाबा के पास बैठते थे और बाबा से 5-5 मिनट एक एक को टर्न मिलता था मिलने के लिए। तो ये हॉल भट्टी का जो हॉल है इससे डबल फायदा, एक तो साकार बाबा की तपस्वी स्थान, दूसरा अव्यक्त बाप दादा का वरदानी स्थान। फिर भी जब ये हॉल छोटा होने लगा तो 1983 में ओम शांति भवन बना, फिर ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा वहाँ पर आने लगे। तो इसलिए इस हॉल की बहुत विशेषता है, आपको बहुत गहरे अनुभव होंगे, बाबा बहुत अच्छे अनुभव कराएंगे, झोली भरी हुई रहेगी, लेकिन ध्यान रखना कि झोली में कोई छेद ना हो जाए, अगर छेद हो गया तो फिर तो दूसरा भाग्य लेगा, कोई इसका गिरता जाता ना, दूसरे को मौका मिल जाता है वो चीज़ लेने का, तो इसलिए अपने भाग्य के ही गुण गाते रहना है। और दूसरी बात, आज हम मुरली सुन रहे थे, एक पॉइंट थी बाबा ने कहा अपने आप पर ध्यान देना है, अपने को चेक करना है। नारद का मिसाल है, वो लक्ष्मी को वरना चाहता था, उसे कहा कि दर्पण में देखो कि अपना मुंह तो देखो, तो उसने अपने मुंह को देखा तो फिर वो सोच पे पड़ गया तो अब क्या करना है। अभी बाबा भी हमें कहते अपने आप को चेक करो, तो आप कौन से दर्पण में चेक करेंगे, अब बताओ हैं, कौन से दर्पण में चेक करेंगे। आपको पता है आपके पास कितने प्रकार के दर्पण हैं? नहीं ना। अच्छा, पहला दर्पण है जो माताएं अपने पर्स में रखती है, रखती है ना, छोटा सा दर्पण रखती है, किसी न किसी चीज में होगा, पर्स में होगा, छोटा सा होता है, इतना सा होता है, और वो दर्पण को खोल खोल के देखती रहती हैं। और भाई कौन सा दर्पण देखते हैं? स्कूटर का देखते हैं, या कोई उनके वॉलेट में छोटा होता है, कार का शीशा देखते हैं, उसमें अपने आप को देख करके अपने आप को चेक करते रहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं इस ज्ञान मार्ग के अंदर सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा दर्पण है अपनी आत्मिक स्थिति का। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का कि अपने आप को देखना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया है, आत्मा के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, आत्मा कितनी श्रेष्ठ है, आत्मा कितनी महान है। साकार बाबा की बात बताती हूँ। कभी कभी कई बच्चे साकार बाबा के पास आते थे, कोई ना कोई ऐसी बात होती थी, बच्चे से पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ है, तो बाबा क्यों बताते थे, बाबा इसने आज ऐसा ठीक नहीं किया है। बाबा के पास जाएंगे तो बाबा उसको बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, बहुत कुछ अनुभव कराते। तो बहन कहेगी, बाबा आज आपने इसको इतना प्यार क्यों किया? बाबा ने कहा, इस बच्चे की क्या क्या विशेषता है वो बाप जानता है। और बच्चा, बाबा इतना प्यार करते, वो रियलाइज होता था उसको, बाबा को कहता था, बाबा देखो आज मेरे से ना ये भूल हो गई है। तो बाबा कहते थे, देखो बच्चे ने रियलाइज कर लिया है, तो रियलाइज करना मीन्स अपने को ट्रांसफर करेगा। तो पहला है स्व स्थिति की स्थिति में स्थित रहना, इसको बाबा कहते हैं अति प्यारा, अति सूक्ष्म, जिसको बाबा कहते बिंदु स्वरूप। बिंदु स्वरूप के अंदर सब शक्तियां समाई हुई हैं। और दूसरा दर्पण आप अपने घर के अंदर देखते हो कि हाफ साइज का होता है ना, हाफ साइज का होता है ना, देखा हर घर में लगा होगा। तो बाबा कहते वो दर्पण है कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने का। क्योंकि आप सभी अपने घर में रहते हो, कारोबार करते हो, सेंटर पर रहने वाली बहनों को भी बाबा क्या करते, निमित भाव से रहें कि कराने वाला बाबा है, हम सब निमित हैं, बाबा करा रहा है, करने वाले बाबा करा रहा है, हम सब निमित हैं। तो निमित भाव का कमल पुष्प समान रहने का ये दूसरा दर्पण है। और तीसरा दर्पण आप देखेंगे घर के अंदर एक लंबा सा होता है, उसके अंदर फुल साइज का दर्पण होता है। तो बाबा कहते फुल साइज में, क्योंकि बाबा ने कहा है सब बच्चों को अभी परफेक्ट बनना है, संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। अब बाप समान बनना है तो अपने हर प्रकार के संपन्नता के लक्षण क्या है, उन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करना है। और चौथे प्रकार का एक दर्पण होता है, वो कहाँ कहाँ किसी न किसी म्यूजियम में होता है। वो ऐसा दर्पण होता है, साइड में देखोगे तो टेढ़ा दिखाई देगा, आगे से देखोगे तो पतला मोटा दिखाई देगा, किसी का मुंह टेढ़ा दिखाई देगा। और फनी दर्पण होता है, वो दर्पण भी सबके पास है, कभी देखा है ना कि नहीं है, सबके पास है जरूर, लेकिन छिपा के रखा है। फिर टाइम पर खोलते हैं, फिर कहेंगे बाबा मैं क्या करूं, माया आ गई, बाबा मेरा योग नहीं लगता, मैं क्या करूं, ये लोग तो फ्री हैं, इनको कोई भी बंधन नहीं है, मेरे को बहुत बंधन है, मेरे को पति का बंधन है, बच्चों का बंधन है। फिर आएंगे कहेंगे हमको कहेंगे बहन जी आप बाबा को कहना मेरे पति का बंधन छूटे। बाबा कहते इसी के लिए बुलाया था क्या मेरे को, पति तुम्हारा है, बंधन तुम्हारा है, बाबा क्यों छोड़ेंगे, बाबा क्यों तोड़ेंगे, तुम योग लगाओ। योग लगाओगे तो योग से उसको शक्ति मिलेगी, नहीं तो बाबा करेगा तुम तो पुरुषार्थ करोगे नहीं। तो वो दर्पण छिपा के रखा हुआ, वो माया का दर्पण है, कभी ना कभी कहाँ ना कहाँ से आ जाता है। चूहे की तरह होता है ना, कभी इधर से निकला, मोटा चूहा पकड़ना तो सहज होता है, छोटा चूहा जो होता है ना वो इतना शैतान होता है, इतना शैतान, इधर से पकड़ो तो वहां पहुंच जाएगा, इधर से पहुंचो तो उधर पहुंच जाएगा। तो माया ऐसा उसमें रूप धारण कर लेती है, माया को भगाने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं पर छिप के बैठ जाती है, फिर अपने अलग अलग रूप दिखाते रहते हैं। कभी अपने को बहुत लंबा देखेंगे, कभी देह अभिमान में आ जाएंगे, कभी कहेंगे मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा पुरुषार्थी हूँ। बाबा के पास बच्चे पत्र लिखते थे, बाबा को कहते बाबा आज तो मैंने 8 घंटा योग किया। बाबा कहते थे ये चार्ट जो है ना इसको साइड में रख दो, क्योंकि 8 घंटा कंटिन्यू कैसे किया। फिर क्या करते रहते हैं, बच्चे भी शैतान तो है ना, कहेंगे देखो कुछ हो तो दवा ले लेना ना। तो बाबा कहते बच्चे तो शैतान तो है ना, कहेंगे आधा घंटा सुबह योग किया, फिर 15 मिनट फिर पीछे योग किया, फिर 15 मिनट 10 मिनट क्लास के बाद योग किया, फिर 5 मिनट योग किया, फिर 5 मिनट शांति स्तंभ पर योग किया। अरे योग किया या गिनती किया है? गिनती का योग है, योग तो करते ही नहीं है ना। बाबा को प्यार से याद करते हैं, बाबा मैं 5 मिनट बैठा था ना तो 5 मिनट भी ऐड हो गया। तो ये हमारी स्थिति चल रही है कि हर समय काउंटिंग करने का। बाबा ने कभी काउंट किया कि मैं बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, बच्चों की इतनी सेवा करता हूँ? बाबा कहते मैं तो हूँ ही सर्वेंट, मैं तो भी डेंट सर्वेंट हूँ, मैं तो कभी सोचता ही नहीं, मैं तो कहता तो सब कुछ आपके लिए। बाबा जब गिनती नहीं करते तो बच्चे क्यों गिनती करते? तो गिनती नहीं करना है, बाबा को प्यार से याद करना है। और दूसरी बात, फिर बच्चे कहते हैं बाबा को बाबा क्या करे, जब आपको याद करने बैठते हैं बाबा भूल जाता, ऐसे होता है कि नहीं है? भूलता है कि नहीं भूलता? बाबा बुद्धि इधर चली, कोई भूली हुई बात होगी ना योग में बैठेंगे याद आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती, हर भट्टी में सुनाती, आपको भी सुना देती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, जब बाबा ओम शांति भवन में मिलते थे ना, तो ओम शांति भवन में ग्रुप ग्रुप मिलते थे। बाबा की मुरली, जैसे इस संडे की एक मुरली बहुत छोटी थी, और मुरली छोटी होती थी और बाबा ग्रुप ग्रुप से मिलते थे। तो फिर बाबा जब मुरली चलाते थे, स्टेज पर आके बैठते थे, तो एक भाई था विदेश से आया हुआ, वो बार बार यही कहता था कि मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा, मेरा तो योग नहीं लगता है। तो जैसे बाबा के सामने बैठा तो बाबा ने उसको वरदान दिया, सदा का सहज योगी। उसको देखकर के सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्या हुआ है? सबने कहा बाबा ये तो कहता मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा ये क्या कर रहा है, यही तो कहता बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं कैसे आपको याद करूं, बाबा मैं आपके कमरे में आऊंगा आज पावरफुल योग करूंगा, घर से निकलेगा आज मैं बाबा को अच्छी तरह योग याद करूंगा। तो क्या करता है, सबसे ज्यादा याद तो यही करता है, और तो कोई नहीं कर रहा। बार बार क्या कहता है, बाबा बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहते कहते वो क्या करते, बुद्धि को पीछे कर देता है। जैसे कोई चलते चलते उल्टा चलना शुरू कर दे, किसी का मुंह पीछे लग जाए तो क्या कहेंगे, ये कार्टून आ गया, कार्टून आ गया ना। तो बाबा कहते बाबा की याद में हमको आदत जो पड़ी हुई है भक्ति की, मांगने की, बाबा ये काम कर दो, बाबा ये कर दो। बाबा के सामने कोई भी कहता था ना बाबा मेरे सिर पे हाथ रख दो, बाबा कहते देखो देखो भगत आ गया। बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, बाबा कहते बच्चे हैं, अधिकारी हैं, भगत तो नहीं है ना, तो भगत नहीं बनना है, बाबा के बच्चे अधिकारी बनना है। तो इस बात का सबको विशेष ध्यान रखना है। और फिर जबकि मम्मा का महीना चल रहा है, तो मम्मा जब के मम्मा के तो पुरुषार्थ की इतनी बातें हैं, सुनाते जाएं पूरी तो नहीं होंगी, लेकिन एक बात सुनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता था मम्मा के पास, बाबा ना कोई भी कार्य के लिए मम्मा को ड्यूटी देते थे, मम्मा ये कार्य कराना है, तो उस समय सब छोटी छोटी बच्चे थे, दादियां तो बिल्कुल छोटे छोटे थे और कई तो बहुत एक्टिव भी थे, कई और एक्टिव थे लेकिन कभी कभी किसी काम के लिए ना कर देते थे। तो मम्मा कहती थी बाबा ने कहा है ये कार्य करना है, तो बहने क्या कहती है मम्मा हमने कभी ये कार्य किया थोड़ी है, हमको आता थोड़ी है, हम ये नहीं कर सकते। मम्मा कहती थी ना मीन्स नास्तिक, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं, तुम नास्तिक थोड़ी हो। आप कहो बाबा हमें सिखाओ, हमें बताओ, हम ये कार्य करेंगे। तो इसी तरह से मम्मा क्या हर बात को इतना गहराई की ओर ले जाती थी, उस गहराई के कारण आज मम्मा जो है परफेक्शन की स्टेज में आ गई और हर पुरुषार्थ को बहुत अच्छी तरह से किया। तो इसलिए फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ आप सबका मुख मीठा कराया जाएगा, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा क्या कहते बच्चों को, कौन से बच्चे बताओ, कौन से बच्चे हो हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं, सिकी लदे और नूरे रतन। और बाबा हमेशा कहते थे मेरे टोल पुट बच्चे, टोल समझते हैं, टोल है सिंधी में कहते टोली मीन्स मिठाई, और दिल्ली में क्या कहेंगे मिठाई को बच्चे को, कि आओ बच्चे चीजी ले लो, चीजी ले लो, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, तो यही कहेंगे मिठाई ले लो, आज मीठी चीज खा लो, ऐसे कहते ना। तो बाबा कहते थे कलब के बाद के बिछड़े हुए हैं, इतने मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे। देखो बाबा जिसका वर्णन करे कि ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे, ये सोच सकते आप, इतना साधारण जिसने एक बार कह दिया बाबा, और बाबा कहते मेरा लाडला बच्चा है। आप दुनिया की भेंट में कहेंगे, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कईयों ने देखा होगा कईयों ने नहीं देखा होगा, यहाँ पर एक भाई था अर्जुन दादा, पुरानी बहनों ने देखा है, वो अर्जुन दादा था, वो पुराने यज्ञ की स्थापना से अपने माँ के साथ आया था, लेकिन वो बाहरी दुनिया मेंटली इतना डेवलप नहीं था, लेकिन बाबा उसको इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा ने उसको अपने कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख दिया था, वो पेंट शर्ट डाल करके, सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ा डाल के, टोपी डाल करके, डंडा हाथ में खड़ा है लेके खड़ा, कोई जाए तो सही जाने नहीं देता था। अच्छा बाबा उसको कहते थे कि तुम कोई भी काम है ना, तो बाबा उसको कहते थे तुम फलाने व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, ये मैसेज दे के आओ, उसने वो एक्यूरेट काम करना, वो एक्यूरेट काम करना कि वो कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के और बाबा का मैसेज दे के आए। अब तो उसको मेंटली इतना डेवलप हो गया। तो फिर और हंसी की बात सुनाती हूँ, तो बाबा ने उसको कहा था किसी बहनों को कि जो इसको एक से लेकर दस तक गिनती सिखाएगा उसको बाबा चांदी का गिलास इनाम में देंगे। अच्छा जो भी सिखाया सब बहनों ने ट्राई किया, सुनिए कहानी नहीं, अच्छा तो वो जब सुनाता था तो कहेगा एक दो, फिर कहेगा चार, फिर कहेगा छः, फिर कहेगा एक एक अक्षर छोड़ता जाता था। फिर दीदी मनमोहिनी ने कहा अर्जुन जब हम तेरे को सिखाते हैं तुम ठीक बोलता है, फिर बाबा के सामने तू क्यों ऐसे शब्द छोड़ देता है। कहता क्यों, वो चांदी का गिलास क्यों ले, मैं क्यों ना लूं, क्यों वो क्यों लेगा, मैं क्यों सुन, मैं बाबा ने कहा बाबा तो मुझे देना, मैं एक्यूरेट ड्यूटी करता हूँ, ये थोड़ी एक्यूरेट ड्यूटी करते हैं। अब बताओ इतना बाबा उसको प्यार दिया, इतना उसका माइंड डेवलप हो गया, इतना वो सब करने लगा, तो बाबा तो क्या बुद्धियों को बुद्धुओं को बुद्धि देने वाला है, बुद्धि का ताला खोलने वाला है, जिसको दुनिया का ये किसी काम का नहीं है उसको बाबा इतना ऊंच बना देता, जो बाबा के अंग संग रहे सारा टाइम, बाबा को देखे, बाबा जो खाना खाए बाबा कहेंगे अर्जुन आओ तुम्हारे लिए बाबा ने ये टोली रखी है, आओ तुम ये टोली खाओ, तुम सारा दिन तो बाबा के हाथ का खाना खाता, टोली खाता, इससे बढ़ के और क्या भाग्य चाहिए। तो हम सब बाबा के बच्चे कितने लाडले हैं, सुबह से लेकर के रात तक कितना बाबा मुख मीठा कराता है। सेंटर पर तो रोज टोली नहीं मिलती है ना, मिलती है रोज, क्लास की टोली तब मिलेगी जब कोई बड़ी बहन आएगी या कोई प्रोग्राम होगा या कोई फंक्शन करने जा रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे तब खाना मिलेगा, टोली मिलेगी। यहाँ तो रोज क्लास के बाद टोली मिलती है। तो बाबा ने कहा सिस्टम जो बनाया था वो टोली बाबा हमेशा देते थे। फिर कभी कभी पार्टी आती थी, दादी आंगन में खड़ी होती थी तो फिर वो मिल के जाते, थोड़ी देर के बाद आते कहते हमको दादी से मिलना। अरे अभी तो दादी से आप मिले, कहते टोली कहाँ खाई है। टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं खाएंगे तो दादी खिलाएगी, नहीं मिलेगी तो मांगेंगे, तो टोली तो मिलना ही है। अच्छा, और दूसरी बात, आपका भाग्य कितना अच्छा है कि मौसम भी बहुत सुंदर है। दिल्ली की जो बारिश होती है वो अलग प्रकार की होती है, भले खूब बारिश आई लेकिन वो अलग प्रकार की बारिश होती है। यहाँ की बारिश तो फिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अनुभव कराती है। फिर साथ साथ क्या होता है, मौसम बड़ा अच्छा होता है ना, फ्री होते हैं तो सोचते थोड़ा घूम के आ जाए। अब फिर और बता दो, आप सब कहाँ रहते हैं? माउंट आबू ये जंगल एरिया है, बाबा ने जंगल को मंगल बनाया है। और जंगल के राजाएं कौन होते हैं? जो शेर चीता है, तो वो आपसे मिलने आए तो क्या करोगे? अच्छा बाबा को याद करेंगे, वो तो खुश हो जाएगा, दिल्ली के इतने इतने अच्छे पहलवान आए हैं तो क्यों तो खुश हो जाएगा, है ना। लेकिन आएगा नहीं, कभी आता नहीं है। लेकिन बरसात का टाइम होता है ना, कभी कभी भालू अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए नक्की लेक साइड जाते, इधर नहीं आते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अकेले नहीं जाना, अंधेरे में अकेले घूमने नहीं जाओ, अगर जाते भी हैं तो दो तीन साथ में हो, अकेले नहीं जाना। वैसे कोई जानवर आते नहीं है, बाय चांस घूमने निकलते हैं और दिखाई दे जाए तो पता भी ना रहे, कभी कभी योग में होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। फिर से आपका स्वागत है और आप सभी को प्यारे बाबा की याद में मुख मीठा कराया जाएगा और टोली मिलेगी। टोली लेते समय हाथ लंबा करेंगे और पहले हम भाइयों को बुलाएंगे, टोली लेकर के फिर भाई भोजन पर जाएंगे, फिर बहनें, कोई नहीं उठेगी जब तक हम नहीं बुलाएं, तब तक बहनें उठेंगे नहीं, ठीक है ना। सब ठीक है, सब आराम से हैं, सब आराम से हैं। बाबा के टाइम पर पता है सब आते थे ना, सब पट पर सोते थे, पट में जमीन पे। बाबा कहते थे ये सब मेरे पट राजा और पट रानी आ गए, और अभी क्या कहेंगे है? अभी क्या कहेंगे है? अभी कहेंगे बाबा के दिल तख्त नशीन है, वो कहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, वहाँ देखो तो जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ते में पड़े हैं, सड़क पर पड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है, कहीं कहाँ कॉर्नर में बैठ जाते हैं। यहाँ तो बाबा के घर गए, बाबा कहते कुछ भी हो जाए बाबा के बच्चे हर प्रकार से सुखी हैं और बाबा ध्यान रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।